ఏం విష్ణుపాద పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య స్తోత్ర సత శ్రీ శ్రీమద్ అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద మహారాజ్ కి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్య భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద మహారాజ్ కి నిత్రిలా ప్రవిష్ట జయం విష్ణుపాద పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య స్తోత్ర సత శ్రీ శ్రీమద్ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి మహారాజ్ ప్రభుపాదికి అనంతకుటి వైష్ణవ భక్త బృందకి నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకృకి జయ రూప సనాతన భట్ట రఘునాథ్ శ్రీజీవ గోపాల్ భట్ట దాస రఘునాథ్ షడ్గోస్వామి ప్రభుగణకి ప్రేమ్ సి కహో శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసాది గౌరవభక్త బృందకి శ్రీ 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 రాధా కృష్ణ గోప గోపినాథ్ శ్రీ రాధాకుండ శ్యామకుండ శ్రీగిరిరాజ గోవర్ధన్జీ మహారాజ్ కి జయ శ్రీ శ్రీ వ్రజ బృందావన ధామకి శ్రీ నవదీప్ మాయాపుర ధామకి శ్రీక్షేత్ర శ్రీ పురుషోత్తమ ధామకి శ్రీ రామేశ్వర ధామకి శ్రీ ద్వారికా ధామకి శ్రీ బద్రికా ధామకి శ్రీ అయోధ్యా ధామకి గంగాదేవి జమునాదేవికి బృందాదేవి తులసి మహారాణికి జుగధర్మ శ్రీ హరినామ సంకీర్తనకి సమవేత భక్త వృందకి నితాయ గౌర హరి ప్రేమానందే హరే కృష్ణ. జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద तो आज आपके क्रम के अनुसार श्री चैतन्य चरितामृत से पाठ करेंगे. मध्य लीला चैप्टर 9 श्लोक संख्या 201. पतिव्रता शिरोमणि जनक नंदिनी జగతేర మాతా సీతారామేర గృహిణీ పతివ్రత శిరోమణి జనక నందినీ జగతేర మాతా సీతారామేర గృహిణీ పతివ్రత శిరోమణి జనక నందినీ జగతేర మాతా సీతారామేర గృహిణీ. శబ్దార్థ పతివ్రత, పతివ్రత శిరోమణి సర్వోచ్చ, జనక నందిని రాజా జనక్కి పుత్రి, జగతేర మాతా తిను జగత్ కే మాతా, సీత శ్రీ సీతాజీ, రామేర గృహిణి భగవాన్ శ్రీ రామచంద్ర కే పత్ని. తో దో దిన్ సే ఆప్ లోగ్ ఫిస్ట్ లే రహే థే, ఆజ్ ఆప్కు సాదా కడువా భోజన్ మిలేగా. तो लेकिन अच्छा है कि चैतन्य चरित अमृत है, तो इसे काम चला लेने का पड़ेगा. तो श्रीमन महाप्रभु दक्षिण भारत के भ्रमण में जाकर के चतुर्मास आदि व्रत उद्यापन करके अब दक्षिण भारत का भारत के प्रांत रामेश्वर, मदुराई के बाद रामेश्वर पहुंच चुके हैं. मदुराई में जब भगवान थे तब एक भक्त ने उनको अपना घर में, उनका नाम था रामदास विप्र, ब्राह्मण था. महाप्रभु तो कोई ब्राह्मण के घर में भोजन लेते थे प्रतिदिन, उनको बुलाया था उनके घर में भिक्षा लेने के लिए. महाप्रभु गए प्रतिदिन, उनने दोपहर मध्यान्ह स्नान करके ठीक 12 बजे पहुंच जाते थे. लंच टाइम में एक टाइम लेते थे भोजन, और जाके पहुंचे तो वो विप्र क्या क्या था, अब बैठ करके बैठा था चुपचाप, ना कोई कुकिंग किया था कुछ नहीं. तभी जाओ ना तो ऐसे आजकल क्या चूल्हा ओवन ये सब नहीं होता था, लकड़ी से बनाना पड़ता था, और कुछ भी नहीं किया था, चूल्हा नहीं चेता था, कुछ नहीं किया था। चेतन महाप्रभु बोले, अरे क्या मुझे इनवाइट किया है तो बैठा है चुपचाप, कुछ नहीं किया है, आज तो मुझे घर आना पड़ेगा। भगवान गए, वो उठता नहीं, वो स्वागत भी नहीं किया, बैठा था। जा करके उनको बोले, हे विप्रदेव आप मुझे इनवाइट, बैठिए अभी तो लक्ष्मण गए भी आएंगे, अब सीता जी तो है ही नहीं, अभी अब कुकिंग होगा तब तो प्रसाद पाएंगे अपने, हो आपने खोए हुए हैं अपने चिंतन में। अब महाप्रभु देखे तो बिल्कुल दूसरी स्थिति में है, अब क्या करूं। बोले क्या तकलीफ है, बोले तकलीफ क्या है, मैं जी कर क्यों हूं, मर क्यों नहीं जाता हूं। बोले क्यों, बोले सीता देवी तीन लोक की मां है, भगवान राम की रामपत्नी है, उनको इस राक्षस रावण ने उठा लिया, हरण किया, उसको मैं कैसे सहन कर सकती हूं, मैं बैठा मर नहीं गया वहां तक। इतने दुखी था, बोल करके बड़े दुखी हो गए, और क्या कुकिंग करना खाना है, इतने दुखी होकर। तो भगवान बोले सही में उसको बड़ा चिंतन में लगा, बोले आप जो बोल रहे हैं कि भगवान राम की धर्म पत्नी जगन माता सीता को रावण ने ले लिया, ये ठीक नहीं है। सीता को रावण कैसे स्पर्श, ना यही तो मैं सोचता हूं कैसे स्पर्श किया, कैसे संभव है। बोले संभव ही नहीं है, वो किया ही नहीं। बोले फिर क्या गलत है, बोले नहीं वो तो डुप्लीकेट सीता लेकर गया, असली सीता नहीं लिया। बोला क्या ये बात सच है, कोई प्रमाण है उसका। बोले देखो प्रमाण मैं आपको दूंगा ला करके, लेकिन बात उसे मान लेते, लेकिन इतना मान गया महाप्रभु ऐसा कह रहा कि मान करके इतने प्रसन्न हो गया और बड़े सुखी हो गया, आपने स्थिति में आ गया। बोला आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको बुलाया था और कुछ व्यवस्था नहीं कर बैठे थे, और जल्दी जल्दी से कुछ किया इधर उधर, और ना ढंग से भोजन दे पाया ना कुछ कर पाया, महाप्रभु जैसे तैसे खा फूकर चले गए, और बोला कि नहीं अब क्या करूं, अब व्यवस्था कुछ था नहीं, ऐसे ऐसे कर दिया। लेकिन महाप्रभु वो तो मन में सोचा कि दोबारा मैं कोई सेवा करूंगा, सेवा नहीं कर पाया। महाप्रभु सोच रहे थे मैं तो बोल दिया, लेकिन प्रमाण उसको देना पड़ेगा तब तो ठीक से मानेगा। तो महाप्रभु फिर मदुराई से जब रामेश्वरम आए, रामेश्वरम आते समय रास्ता में दर्वसेन आता है, उसको सेतु कराई वो जागा का नाम है, तो वहां से दर्शन करके अब जो कविराज गोस्वामी लिखते हैं कहीं उसका ठीक ठीक वर्णन एक के बाद एक नहीं है, वो लिखे कि दर्वसेन के बाद महेंद्रगिरी गए, महेंद्रगिरी को और कहाँ केरला में है वो बिल्कुल सीक्वेंस नहीं है, लेकिन दर्वसेन के बाद रामेश्वर तो है। तो रामेश्वर गए, रामेश्वर में जा करके रामेश्वर दर्शन किए, सेतु बंध दर्शन किए, और वहाँ रामेश्वर मंदिर में शाम के समय में पंडित लोग बैठ करके पुराण पाठ करते थे, वहां बैठे कुर्म पुराण पाठ हो रहा था, और कुर्म पुराण में यही प्रसंग चल रहा था, भगवान है वो तो वही प्रसंग चल रहा था, वही प्रसंग में श्लोक आगे आएगा, दो ही श्लोक महाप्रभु ने सुने जिसमें सीता जी का वर्णन आया कि किस प्रकार जैसे रावण ने आया उनको सीता जी को पता चल गया कि तो रावण है, मैं तो भिक्षा दे रहा था साधु समझ करके, साधु नहीं ये डुप्लीकेट है। तब उन्होंने जो लक्ष्मण ने अग्नि रेखा काटा था तो उनके शरण में गई, तो अग्निदेव ने तुरंत आकर सीता जी को लेकर के पार्वती के स्थान में रख लिए पार्वती के पास, और एक डुप्लीकेट छाया सीता दे दी, रावण छाया सीता को लेकर गया था सीता देवी के समय। ये प्रमाण उनसे मांगे वो तो दिए नहीं, फिर वो बोले कि मैं लिख करके देता हूँ, लिख करके दिए, और वो जो ओरिजिनल पेज मैंने पहले तो किताब नहीं होता था, ऐसे ऐसे पेज हुआ करता था, बोले कृपा कर मुझे ये पेज दीजिए नहीं तो विश्वास नहीं करेगा, ओरिजिनल पेज चाहिए, मैं आपको तो फोटो कॉपी तो था नहीं तभी, तो हाथ में भगवान अपना हैंड राइटिंग करके उनको दिए, बोले इससे आप रख लीजिए मैं उसको लेता हूँ। तो उनका बड़े भाग्य है भगवान का हस्तलिपि मिल गया ये क्या, जो भी उनको दे करके और उसको लेकर फिर वापस आए। भगवान ने कहाँ चले गए थे सेतुबंध तक रामेश्वर, ऑल दी वे वापस आए आ करके मदुरई फिर केवल, देखिए भगवान कैसे भाव है, केवल उनको समझाने के लिए, उनको प्रूफ देने के लिए, नहीं देखो प्रमाण पुराण वाक्य है यही बात। तो ये भगवान भी इस आचरण से सिखाते हैं कैसे हमको प्रमाणिक चीज अगर मिले तो लोगों को प्रमाणिक इसे दिखाना चाहिए, और अगर किसी को बोल भी दिए अनुमान मन में रहता है, जब प्रमाण मिला तो तुरंत बताना चाहिए, देखो दिस इज द प्रूफ। महाप्रभु अली हुए वहां से वापस आकर के और उस ब्राह्मण को दिए, ब्राह्मण ने इतने खुश हुआ, दोबारा उनको प्रसाद खिलाया जो भी किया। तो इसमें इसमें कहते हैं ये भगवत वाक्य है, महाप्रभु साक्षात उनको बोलते हैं कि पतिव्रता शिरोमणि जनक नंदिनी, आप इसको क्यों डाउट कर रहे हैं, जनक नंदिनी वो तो प्रतिव्रताओं की शिरोमणि है और तीन लोक के माता है, जगत एरव माता सीता रामेर गृहिणी, वो जगन माता है, भगवान राम की पत्नी है, उनको कैसे हो भगवत माता को कैसे रावण स्पर्श कर सकता है, किसे कर सकता है। इसमें ये बात को न कह करके भगवान ने ये जो प्यार में रावण ले लिया के इस बात को जोर नहीं दिए, सीता जी के जो चरित्र को बड़ा इस प्यार में भगवान ने बोले, ये चैतन्य महाप्रभु ने बोले हैं ये बात कि सीताजी किस प्रकार थी ना, संपूर्ण तीन लोक के मां थी, साक्षात भगवान की गृहिणी धर्मपत्नी थी और जनक नंदिनी पतिव्रताओं में सर्वोच्च थी, शिरोमणि थी। सचमुच आजकल के महिला तो खैर उनका तो चिन्ह, लेकिन फिर भी अगर उन्हीं को हम देखें, सीताजी के आदर्श को ग्रहण करें, तब हमारे भावना हमारे चरित्र वो भी सुधर सकता है। सीता जी किस प्रकार की थी, वो भी एक राजपुत्री थी, ऐसा नहीं ऑर्डिनरी गाल कोई नहीं। जनक नंदिनी कहने का मतलब जनक महाराज, जनक महाराज उनको विदेह करके कहा जाता था, विदेह समझना, देह से परे, इतने ज्ञानी, इतने सेल्फ रियलाइज सोल, इतने बड़े प्रसिद्ध राजा थे जनक महाराज, और उनकी पुत्री थी जनक नंदिनी करके बड़े प्रसिद्ध है। और दूसरी टाइटल क्या दे सीता जी के, कि वो जनक नंदिनी थे ही पतिव्रताओं में शिरोमणि थी, पतिव्रताओं में शिरोमणि। अब जब जनक नंदिनी थे अब तो पति तो मिले नहीं थे उनको, लेकिन इसका कहना है कि शादी होने से पहले पतिव्रताओं का ट्रेनिंग मिलना चाहिए, पति की सेवा किस प्रकार करना है ये शिक्षा बिल्कुल उसके ऊपर पीएचडी पीजी करना चाहिए सारे बालिकाओं को, तब जाकर शादी होना चाहिए, तब तो पति की सेवा करेंगे। पतिव्रताओं की शिक्षा उनके माँ और उनके जो एल्डर्स उनको देना चाहिए, लेकिन क्या करे वही नहीं है तो फिर दूसरे को क्या दे, वो शिक्षा ही खत्म हो गया, परंपरा खत्म। तो इसलिए उनको सीता जी को शिक्षा दिए थे। ऐसे प्रसंग आता है जब भगवान राम के साथ उनको विवाह हुआ है सीता जी का, सीता स्वयंवर के बाद जो विदाई उत्सव होता है, वो सीता जी को केवल जनक महाराज और सुनैना देवी उनको प्रेम नहीं करते थे, पूरे जनक राज्य के जितने प्राणी थे, केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य नहीं जितने और भी प्राणी थे, सब सीता जी को अपने प्राण स्वरूप मानते थे, है ये भगवत शक्ति, इतने चाहते थे। और स्त्रियों का तो यही है कि शादी होने के बाद वो देश, वो गांव, परिवार, घर समझ छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। तब जब विदाई उत्सव हुआ, शादी तो सब बहुत अच्छा मानते हैं, शादी हुआ, लेकिन शादी के बाद जब विदाई आता है इतने दारुण दुख होता है। आजकल तो सब ये लगाकर रोते होंगे क्योंकि ट्रेडिशन मेंटेन थोड़ा बहुत रोना पड़ेगा इसलिए रोते होंगे, लेकिन तभी इतने दुख होता था, इतने दुखी में पूरे जनक मिथिला नगरी रो रहा था सीता जी के विदा। यद्यपि भगवान राम जैसे उनको पति मिले और इतने महाशौर्य था कि शिव धनुष को देखते देखते तोड़ करके प्रमाणित करके सीता को प्राप्त किए, और केवल राम नहीं थे बाकी उनके तीनों भाई भी वहीं पे हुआ शादी सबका, लेकिन इतने बड़ा फेस्टिवल के बाद जब विदाई उत्सव हुआ अब इतने दुखी हो गए पूरे जनक राज्य नगरी, रोते रोते तब जब आई सुनैना देवी जो सीता जी की मां थी, वो रोते रोते आई अपने बेटी को लेकर के। अब शादी के बाद पहले बार विदा करना है, शादी तो पहले तो ऐसे मिले नहीं थे उन्होंने राम से ढंग से। जब विदाई उत्सव होने से पहले दशरथ महाराज और जनक महाराज और ये उस सब बैठे थे, बरपक्ष के दशरथ आदि बड़े बड़े राम भी थे और सीता जी के माता पिता उनके पैरेंट सीता जी को लेकर के आए अंतिम विदा देने के लिए। तो आकर के हाथ जोड़ करके सीता जी के सामने राम को बताते हैं, प्रभु राम ये मेरी भोली भाली है, बहुत सिंपल सरल लड़की है, इतना सब कुछ जानती नहीं है, अपना करके मान के रखना उनको। उनको कह करके विदा देने से पहले अपने बेटी को भी सीख देते हैं कि बेटी आज से तुम ये नहीं सोचना कि ये घर आपका नहीं, वही आपके सब कुछ है, उन्हीं के धर्म पत्नी है, उनके सहधर्म हमेशा उनके साथ रहना, जो भी सुख दुख में उनके साथ रहना, ऐसे नहीं कि गड़बड़ मुझे फोन करना, ऐसे नहीं। सहधर्मिणी उसी समय में उनको कि कितने भी दुख हो सुख हो उन्हीं के साथ हो रहना, वही तेरे परमेश्वर तेरे सब कुछ है, इस प्रकार के शिक्षा सभी के सामने उनके माँ ने उनके पिता ने दे करके उनको राम के हाथ में दिए थे, लीजिए उन संभालिए और आज से तेरे जीवन सर्वस्व वही है, सब कुछ वही है, ऐसा कुछ नहीं तकलीफ है तो फिर इधर आ जाना पिता के घर में, नहीं आज से ये कुछ नहीं, सब कुछ वही है, इस प्रकार शिक्षा दे करके विदा करते थे। आजकल तो शादी हो तो विदाई में बोलते हैं कि बेटी जो मांगा था मुंह मांगा शब्द दिए, अब फिर कुछ गड़बड़ करे ना ये एक्स्ट्रा नंबर रखो जियो सिम का फोन करना, जब नहीं ऐसे कोर्ट में अदालत करे खींच लेंगे उसे जाएगा, इस प्रकार की ट्रेनिंग और पतिव्रता के शिक्षा कैसे मिलेगा उनको, है ना। नहीं अब सीता जी भी गई भगवान राम के साथ विदा होकर के, अब अवधपुर आए मतलब दशरथ महाराज के भवन में अयोध्यापुरी में आए, अयोध्यापुरी में रहे। अब थोड़ी दिन के बाद में तो भगवान राम को राज्याभिषेक होने वाला था, कितने बड़ी सुख समाचार था, पूरे अयोध्या नगरी सज गया था, पूरे तैयारी में था, सब कुछ था। अब सुबह ही राज्याभिषेक होगा, सारा सामग्री आ चुका है, फास्टिंग भी करे वशिष्ठ जी आकर बोल दिए थे कि आज रात से आप फास्टिंग करके रखो कि काल आपको पूजा में बैठना है। तो राम और सीता में व्रत धारण किए थे लेकिन ओवरनाइट क्या गड़बड़ हो गया, अब सुबह सूर्य उदय होले पहले से तो वनवास जाना था, वो बड़े दारुण वर्णन है। जब भगवान राम को बोला दशरथ महाराज तो ऑलमोस्ट चंचलित होकर पड़े थे कुंभ भवन में, अब सारे अयोध्या बाहर में सजाई कर रहा है और जो उनके निज लोग है मंत्री पास जाकर देखे दर्शन वाले दशा देख रहे रो रहे हैं और कई कई का वो बड़े दारुण वर्णन है। तो इसमें भगवान राम को बुलाया गया, भगवान राम आकर देखे दशरथ महाराज तो देख करके दोबारा मूर्छित हो गए राम को देख करके, कुछ बोल नहीं पाए। ऑन बिहाफ ऑफ दशरथ महाराज कैकेयी ने बोली कि राम पिताजी ने यही इच्छा है और मुझे वरदान देते हैं उनका, आपको बोलने में शर्म करते हैं बोल नहीं पाते हैं, अब मैं उनको उससे बोल देता हूँ, यही वो चाहते हैं कि आप 14 साल वन में चले जाओ, भरत तो राजा होगा, अब आप वन में जाओ वनवास करो, वन में वेश धारण करके वन में चला जाओ। तो भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तुरंत बोले मां इतने के लिए इतने क्या करना था, इसे बोल देते, पिता के आज्ञा को पालन करने के लिए आपके मेरे ऊपर डाउट है, आप मुझे अभी तक नहीं पहचाने कि पिता के आदर्श पालन करने में कोई पीछे हटूंगा, वो तो मुझे कैसे बोल देते, निश्चित करता और कोई पिता नहीं कह पाए, इसमें दुख क्यों कर रहे हैं, आप बोल दिया मैं तो करने वाला हूं, मेरे लिए आप जैसे हैं वो भी ऐसे हैं, दोनों मेरे लिए पूज्य हैं, मैं मानता हूं मैं करूंगा जाऊंगा ना, बोले लेट नहीं करना है, सुबह होने से पहले निकलना है, बोले बस निकलता कृपा करके थोड़ा मैं जाकर के घर में बताकर आ जाता हूँ, क्योंकि अभी तक तो सीता जी भी पता नहीं ड्रेसिंग फेसिंग कर रहा होगा, क्योंकि अब अभिषेक के जाना था टाइम हो रहा है, अभिषेक राज्य अभिषेक जाने का टाइम हो बैठी है और माता कौशल्या ने क्या क्या तैयारी की होगी, तो बोले ठीक है जल्दी जाओ उनको बोलकर के आ जाओ। और राम गए उनको बोलने के लिए। पहले माँ के पास गए कौशल्या भवन में। कौशल्या जी तो जब उनको रात को खबर मिल गया था उनसे पहले से पता था, और दशरथ महाराज कौशल्या के पास पहले नहीं गए थे कि इस समाधान, वो तो कहके के भवन में पहले आ गए, वो वहीं आके फंस गए थे। लेकिन कौशल्या माता को पता चल गया था क्योंकि राम ने बताया था कि मुझे कुल गुरु आके बता के गए व्रत धारण के काल सुबह हमसे। तो इस खुशी के कारण रात भर पाठ पूजन दान दक्षिणा सुबह सुबह तक कितने ब्राह्मण को बुला करके भंडारा दे रहा था और खूब पूजा मांगलिक उत्सव चल रहा था कौशल्या भवन में, इतने खुश था। भगवान राम जब पधारे मां कौशल्या को कौशल्या देवी बोली ये समय तो आप कभी नहीं आता, कैसे आ गए, इतने खुशी में थे, भले भला आया आप सब में खिला रहा हूं, ये चल रहा है, आप बैठा आप थोड़ा को मुंह मीठा कर लो बेटा, आपने बेटा को जैसे बिल्कुल स्नेह से लेकर बैठा के खिलाने के लिए। बोले माँ क्योंकि अभी आसन दिए रत्नासन, बैठने के लिए बैठो तो सही, थोड़ा कुछ खा लो, सब में खिला रहा हूं, आज आपका इतने बड़े उत्सव है राज्य अभिषेक, आज तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी में बैठो। भगवान बैठ नहीं रहते, क्यों, क्योंकि वनवासी हो चुके हैं, रत्नासन में बैठेंगे नहीं, उन्होंने अभी वनवास धारण करना है, फिर राजासन में बैठेंगे नहीं, उन्होंने बैठे नहीं। आप फिर की ना खाए, आप धीरे धीरे बोले एक सीरियस बात तुझे कहना है। न क्या, न कुछ दुख नहीं करना, पिताजी ने कुछ ऐसे आदेश दिए हैं, कुछ थोड़ा प्रोग्राम में चेंज चांज हुआ है, अनाउंसमेंट पूरा नहीं हुआ, प्रोग्राम में थोड़ा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ, ना ऐसे ऐसे मुझे अयोध्या के राजा ना बना करके बन के राजा बना दिए, वनराज कर दिए, राजा तो मुझे बनाए, वो देश दे दिए, अयोध्या देश के वन प्रदेश दे दिए मुझे। क्या तुझे राज्याभिषेक नहीं, वो अभिषेक की जरूरत है, जंगल में अभिषेक क्या जरूरत है, जंगल के राजा अभिषेक है। भगवान राम ने बड़े जो एक माता जी कहे, माता जी तो आप अनुमान कर सकते हैं कौशल्या माता को कितने बड़ा दुख पहुंचा होगा, कितने बड़ा दुख पहुंचा होगा, लेकिन भगवान भगवान है, ऐसे हैंडल किए, ऐसे दारुण परिस्थिति को, मां कौशल्या को तो इतने दुख हुआ, विकल हो गई रो करके, लेकिन फिर भी उनको भगवान भगवान है, इतने मधुर वचन है, इतने मधुर व्यवहार है, हैंडल कर लिया उनको, ऐसे ऐसे बात कहे कुछ मिनट में, आधे घंटा में माताजी को राजी करा लिए, राजी करा ही लिए। वो बोला ठीक है, रो रो करके राजी होना पड़ा, भगवान जिस राजी कर रहे, ऐसे मधुर वाणी कहे, उपाय नहीं था उनके पास, बिना खाए बिना बैठे ऐसे ही समझा दिए, रो रो करके बड़े दुख दर्द के साथ समझी, तो उनको हैंडल करके बोले अभी तो अपना घर में जाना पड़ेगा, पत्नी से कोई बोलना पड़ेगा भाई, उनसे परमिशन लाना पड़ेगा जाने से पहले। तब जो सीताजी के पास जाते हैं भगवान राम, अब सीताजी तो बोले ऐसे किस आ रहे, सीरियस अभी तो टाइम हो रहा है जाने के लिए, अभी से बैठना है, अब क्या कहें, बिल्कुल देखिए कितने ड्रास्टिक चेंज सिचुएशन। हम जिसको अभी भी प्रसिद्ध बोलते मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान राम मंगलायतन है, मंगल के स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस ऑफ ऑस्पिशियसनेस, और केवल मंगल के घर नहीं है, अमंगल को हरण करने वाले, यही साक्षात प्रतिमूर्ति जो अमंगल को हरणकारी मंगल के भवन है, वही मूर्तिमंत भगवान मंगल देव आज उनके राज्य में और उनके परिवार में, उनके माँ उनके पत्नी में, ये क्या मंगल बात है या अमंगल बात है, ये आप लोग सोचिए, हो कैसे सकता है, कैसे संभव हो सकता है, जो स्वयं मंगल भवन है उनके घर में अभी सुबह सुबह होते होते जस्ट मॉर्निंग आवर, सूर्य उदय होते ही सूर्यवंशी राजाओं का इतनी बड़ी भारी, अब जो भी हो सीता माँ फिर जब आकर के उन्होंने बोले कि क्या हुआ अभी इसे तैयार करना ना, उनको भी बोले भगवान तो धर्म सत्यवाद ही है, बोले प्रोग्राम में थोड़ा चेंज हुआ है, अभी जाना जरूरत नहीं, अब ऐसे है मुझे अभी वन में जाना है, वनवास जाना है 14 साल तक, अरे बाप रे बाप, सीता जी तो ठिठक गई, ये क्या हो गया? अब बोले मुझे जाना है जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। अब उनको बोलने लगे फाइनल निश्चय दे दो, बोले मैं जाना से पहले ऐसे ऐसी बात है कि आप मैं तो चला जाऊंगा, आप देखना माँ बड़ा दुखी है, पिताजी तो इसी दुखी में देख करके आया, वो संतुष्ट पड़े हैं, माँ तो बुरी हालत उनका भी, तो आप एक आदर्श पत्नी के रूप में, बहू के रूप में, राजवधु के सबसे बड़े बेटा का राजवधु के रूप में आपका कर्तव्य है कि सास ससुर का देखभाल करना। माता पिता मेरे बड़े दुखी अवस्था में, मैं तो आज ही चला जाऊंगा, अभी मुझे जाना ही टाइम है और ज्यादा टाइम मेरे पास है नहीं, अभी मैं निकल जाऊंगा, तो उसके बाद में आप देखभाल करते रहना, माता पिता का बड़े ध्यान देना, और बाकी जो भी धर्म करो, जैसे अभी सुबह स्नान करके परिचर्या आदि करके, जैसे व्रत धारण, ये ध्यान व्रत धर्म नियम ठीक से पालन करना और माता पिताओं की देखभाल करना। और अभी तो राजा तो भरत बनने वाले हैं, भरत भरत राजा होंगे, और मेरा आशा है कि भरत तुझे दिक्कत नहीं करेगी, आपके साथ आपको ठीक ठाक देखभाल करेंगे। अगर आपको उनके साथ जमेगा नहीं, अगर आपके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होता है भरत जी के साथ, तो मैं आपको परमिशन पहले से देता हूँ, आप अपने घर में जा सकते हैं, आपके पिता 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 के घर, मायके बोलते ना, आप यहाँ जा सकते हो, मैं तो लेट में आऊँगा 14 साल के बाद, आप यहाँ रह सकते हो, फिर मैं आने के बाद फिर आना, आप जा सकते हो, और ठीक है बाकी सब ठीक ठाक देखभाल करना, आप ध्यान में रखना बाकी सब घर मेंटेन करना, क्योंकि आप बड़े वृद्ध हुए, बाकी जो छोटे भाई और उनके जो बहू हैं टेक केयर करना, सब ठीक मैनेज करना, आप ऐसे एक्सपर्ट हो तो देखना। और कह करके निकलने के बाद थे, वो सीता जी सुन रही थी, रो रही थी, सुन रही थी, सुन रही थी, अंत में बोले प्रभु मैं समझ रहा हूँ कि आप व्यस्त है, आप पास समय की कमी है, आप नहीं सुना, लेकिन एक मिनट तो मेरा सुन लीजिए, मेरा सुनने वक्त चले जाएंगे ना, ठीक है बोलो जल्दी बोलो क्या बोलना। बोले जब तक जिस दिन आप मेरे हाथ पकड़ कर विवाह करके पत्नी के रूप में, धर्म पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार किए, उस दिन के बाद क्या याद नहीं आपके, मेरे माता पिता ने मुझे क्या शिक्षा देकर भेजे थे आपके साथ, यही शिक्षा देकर दिए थे क्या कि पति जाएंगे जंगल में दुख भोगेंगे, आप राज पलंग में सो करके करेंगे, ऐसा नहीं, मैं इसके घर के बेटी नहीं हूं, ऐसे शिक्षा मुझे नहीं मिला ना, सहधर्मिणी करके मां मुझे बताई, आपके सहचरी हूं, आप दुख में रहेंगे मैं भी दुखी हूं, आप सुख में रहेंगे, आप वन में रहेंगे मैं रहूंगा राजभवन में, यही क्या पतिव्रता धर्म है, मैं एक पतिव्रता नारी हूं, आपके मुख से मुझे यही उपदेश देना उचित लगता है। जहां तक आप कहते हैं कि देवरों का और देवरानियों का और सास ससुर का देखभाल करना, बोला प्रभु सच बताऊं मेरे लिए सास ससुर देवर देवरानी ये सब कहां बने, पोजीशन कब आया, पहले मेरे लिए आप हैं, आपके साथ संबंध हुआ, आपके पत्नी बना, तभी तो सास ससुर बने, ये देवर देवरानी बने, जब आप ही नहीं रहे आपके साथ तो उनके सेवा में कैसे करूं, मेरे लिए वो तो सब थर्ड पर्सन है। और रही बात आपके आदेश, मेरे लिए सिरोधार्य है, आप कहें कि इस प्रकार धर्म पालन करूं, शासन की सेवा करूं, सब धन करूं, मैं आपके आदेश को सिरमौर करके मानती हूं, करना चाहती हूं, लेकिन प्रभु आपकी क्या पता नहीं है, जिस दिन मैं आपके साथ हो गया हूं, बस मेरा मन तन मन धन आपके पास है, आप निकल जाएंगे तो ये शरीर रहेगा नहीं, मेरा प्राण छूट जाएगा, अगर मेरे स्थूल शरीर को साथ में नहीं लेंगे, सूक्ष्म शरीर आपके साथ जाएगा, रहेगा नहीं, मैं तो मर जाऊंगी, आपका सेवा कैसे हो सकता, सास ससुर का देखभाल हो कैसे सकता, वो भी इसी ने और दुखी होंगे, मुझे मर जाऊंगी और ज्यादा दुखी होंगे, सेवा तो कर नहीं पाऊंगे आपका आदेश पालन करने के बाद, क्योंकि रहेगा नहीं मेरा प्राण आपके साथ चला जाएगा, तुम कैसे उनका सेवा कर सकते। तो आप साक्षात धर्मज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं, आप मुझे ऐसे आदेश क्यों देते हैं, ये उचित है क्या? ऐसा कहकर सीता जी हाथ जोड़ करके फिर रोने लगी। भगवान राम पहले बार आपने ज्ञान, आपने मर्यादा, सब कुछ के साथ बुरी तरह से परास्त हो गए, उनके सामने डिफीट हो गए, कुछ बोलना नहीं रहा, बात ही बंद हो गया। कितने को समझा समझा करके कंट्रोल करके आए थे, लेकिन आज सीता जी के सतीत्व के सामने भगवान परास्त हो गए, वाक्यहीन हो गए, कुछ बोलना नहीं रहा उनके पास। यू आर राइट, कोई पॉइंट से बताओ, कोई शास्त्र नियम ऐसा है? आप जाके जंगल में कंकड़ पत्थर में घूमेंगे, वन फल का कैसे दुख भोगेंगे, और मैं घर में राज पलंग रहेंगे, इसे यही मुझे बोलते हैं, मेरे लिए कर्तव्य है, जगत मुझे इसे खुशी होगा देख करके, आप भी खुशी हो। भगवान राम मुख बंद हो गया, कुछ बोल ही नहीं पाए, बोले ठीक आप क्या चाहते हो, लेकिन ठीक मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आप राजघराने से बढ़कर आए हैं, कितने सुकुमार है, आपके हाथ पर कितने दाम, इतने कष्ट कभी उठाई नहीं, मेरे लिए तो चलो हम शिकार विकार किए हैं, कुछ किए इसे करेंगे, हम चले जाएंगे जंगल में, मुझे पिता ने आदेश दिए थे, आपके लिए थोड़ी बोले, ऑर्डर मुझे मिला है, आपके लिए नहीं मिला है, तो आप इतने कष्ट भी सहन नहीं कर सकती हो, बहुत भारी कष्ट है, तो वन के यंत्रणाप्रद कष्टप्रद परिवेश को वर्णन करने लगे भगवान राम। अब टाइम बोले, अब तो टाइम भी फंस गए, हार गए, तो कैसे तो समझाना है, तो जंगल की जो भयानक दारुण स्थिति है उसको सीता जी को समझाने लगे, बोले इसलिए मैं बोला था, मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरे साथ जाना चाहिए, लेकिन इसलिए बोला कि आप उसको संभाल नहीं सकती, भारी कितने जंगल के बोले ऐसे ऐसे हिंस्र जंतु रहते हैं, खाली पैर में जलना पड़ेगा, कंकण पत्थर कहीं खाने के लिए नहीं मिलेगा, कुछ होने के लिए नहीं मिलेगा, मच्छर क्या क्या कष्ट सुबह जंगल के भारी कष्ट वर्णन करने लगे, तो कैसे चीज जा सकती है, तो इसलिए मैं बोला कि भाई चलो पहले से आपको बता दूं, तो इसलिए बोल कर जा रहा हूं, तो आप यहां तो सब व्यवस्था है सुख का, अगर फिर भी भरत कुछ आपको तकलीफ दे तो आप घर में भी जाकर रह सकते हैं, अब मैं तो आ ही जाऊंगा। तो सीता जी ने बोले प्रभु आप मुझे जंगल के दुख दिखाकर भयभीत कराते हैं, मैं तो जब से आपके साथ हो गई तो आपका ही हो गई, अब मुझे ये राज पलंग में राजभवन में सुख ने आपके बिना ये राज पलंग के राज भोग राज सुख विश्व से भी और बढ़कर के दुख देगा मुझे, लेकिन इस वन्य के कंटक पथ ऐसे हिंस्र जंतु के बीच में ऐसे उपवास ऐसे वनवास के यदि आपके चरण के आश्रम में रहूं तो मेरे लिए राज सुख से भी और बढ़कर वैकुंठ सुख प्राप्त होंगे, इतने सुखी होंगे, कितना सुख है, मैं तो बोलती हूं आपके साथ में जाऊंगी और आगे आगे चलूंगी, आप पीछे पीछे मेरा चलना, मैं आप आगे आगे चलूंगी, तू आगे रास्ता पता है जंगल का, और जंगल में आगे आगे चलोगी कोई आकर खा जाएगा तुझे, वो इतने कंकड़ पत्थर में जाऊंगा थोड़ा रास्ता साफ करना, रास्ता पता नहीं, बोले नहीं आपके चरण के प्रताप से ये सब कुछ हो जाएगा, ये तीर्ण कंकण कांटे भी मेरे लिए नरम हो जाएंगे, ये वन की जो निष्ठुर वास ये जो जंत्रणादायक स्थिति मेरे लिए तो राज सुख से भी और बढ़कर सुख सुखदायी स्थिति हो जाएगी, केवल आपके चरण के प्रताप से, मैं अगर आपके चरण में शरण में रहूं उनकी सेवा करते रहूं तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि जितने सारे कठिन से कठिन परिस्थिति सब मेरे लिए बड़े सुखदायी हो जाएगा, लेकिन आपके चरण की सेवा को छोड़ करके फिर तो रे राज सुख भी सब कुछ मेरे से विश्व भी ज्यादा भयानक, तो इसलिए ऐसा मत कीजिए, मुझे आपके चरण आश्रम में, मैं आपके चरण की सेवा करती रहूं तब कुछ भी दुख मेरे लिए दुख नहीं है, और उसको छोड़ दूं तो ये सारे सुख मेरे से महादुख से भाग जाते, ऐसे कह करके हाथ जोड़ के जब पड़ गई, भगवान राम को कोई उपाय नहीं था, देयर वाज नो ऑप्शन भगवान के लिए, ऐसे रामेर गृहिणी ये जो शब्द इधर दिया गया, राम के गृहिणी कि राम के हैं तो राम के ही हैं, राम वन में रहे तो वन में रहे, राम घर में रहे तो घर में रहे, राम कैसे रहे, राम के साथ, ऐसे ही पतिव्रता, ऐसे ही समर्पिता, ऐसे उचित मर्यादा और चरित्र वाली भगवती सीता, उनको तो गौरव के साथ गर्व के साथ भगवान साथ में लेकर गए, और जब उनका अपहरण हुआ रावण लेकर गया, जो भी हो भगवान राम की कुछ योजना होगा हमको शिक्षा देने के लिए, प्रभुपाद जी ने एक परपट में एक जगह में तो यहाँ तक लिखे हैं कि भगवान राम ये शिक्षा देने के लिए ये लीला किए कि अगर पत्नी को कोई टूर फिर में जाते हैं साथ मत लीजिए, पुराना माने मैं आप पढ़ेंगे तो लिखा है नैन गंडो है ना, नहीं बोले साथ में लेके भगवान देखे दुख ये हाल हुआ। अब उनको बोलेंगे ये चाहिए वो चाहिए, मार्केट फार्केट साथ में लेना, कम से कम अगर कहीं टूर में गए तो साथ मार्केट लेना है, वो देखेंगे ये चाहिए ये चाहिए। बोले गोल्डन डियर कोई होता है, कोई पढ़ा नहीं ना सुना नहीं ना जाना नहीं, स्वर्ण बोले यही चाहिए, अरे कभी होता ही नहीं कोई डुप्लीकेट हो, नहीं नहीं मुझे तो चाहिए। अब क्या जिद करेंगे अगर आप उनको आप फंसेंगे फिर किडनैप हो जाए आप, फिर इतनी परेशानी उठाना पड़ेगा, इतने परेशानी उठाना पड़ेगा, भगवान ने इतनी परेशानी दिखाया। बोले ये है चक्कर। तो जो भी हो, तब जब सीता देवी को रावण ने लेकर चली गई, चला गया, और उसके बाद में भगवान ढूंढ ढूंढ के गए, सेतु बंद किए, रावण को बद्ध किए, रामायण महायुद्ध हुआ। करने के बाद रावण बद्ध होने के बाद में अब विभीषण को उत्तर राजा पहले से बना दिए थे एडवांस, और विष्णु सब ठीक ठाक हो गया, तब फिर विभीषण से वो आकर के भगवान राम बैठे लंका भवन में बैठ करके, सारे अभी तो विभीषण किंग हो चुका है, तब हनुमान जी विभीषण आदि बोले तो फिर माँ सीता को बुला के लाते हैं। भगवान राम गंभीर बैठे थे, दो बार पूछा गया तो बोले ठीक है लाओ, वो बहुत विकल है आपके दर्शन के लिए, अभी तक दर्शन नहीं किए उनको लेकर आए। तो हनुमान जाते हैं सीता जी को लाने के लिए, अब जाकर लेकर आए उनको, वो इतने आनंदित थी, इतने प्रसन्न थी, इतने दिन के बाद, इतने दिन के बाद आज उनके प्राण प्यारे प्राणेश्वर प्रभु के मुख कमल दर्शन होगा, इतने सुख था। अभी तक तो खाना पीना कुछ भी नहीं था, इसी स्थिति में थी, लेकिन आज परम प्रसन्न होकर के आई और पूरे भरपूर सभा बैठा हुआ है, विभीषण एंड पार्टी बैठे हुए हैं लंका राज्य के, भगवान राम तो बैठे हैं, उनके पास लक्ष्मण जी बैठे हैं, और उनके सारे जो सुग्रीव आदि मंत्री परिषद, उनके बानर सेना और जामवान आदि उनके ये सेना, और उसके अलावा दूर दूर लोग से रावण बद्ध हो गया करके कई देवता गंधर्व किन्नर ये लोग वो भी सब आए थैंक यू देने के लिए, सभी आए थे। बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था, माना सभा भवन था, सभा में सब बैठे हुए थे। अब इसी स्थिति में सीता जी को बुला कर लाया गया, अब हनुमान जी लेकर आए, सीता जी आकर के बड़ी उत्सुकता बड़े उमंग से भगवान के पास आना चाहते, आके प्रणाम की सबके सामने, और पंचांग प्रणाम की बड़े, और देखा कि मुझे बुलाएंगे कुछ बोलेंगे पास में बैठेंगे, भगवान राम गंभीर है जैसे पहले थे ऐसे थे, हाथ जोड़ कर देखा, बोले क्या निरपेक्ष मेरे पति कुछ बात ही नहीं करना चाहते, क्या गड़बड़ हो गया, और बिल्कुल मुख से इसे देख कर भगवान राम एक झांकी देखे सीता की ओर, देख करके सभी के सामने बोले बोले हे सीते, आप मैंने एक आदर्श पति के जो कर्तव्य मैंने किया, एक राजा का जो कर्तव्य होना चाहिए राज धर्म को उन्होंने निभाया, एक राजा और एक पति उसका ही कर्तव्य होता है अगर पत्नी अपहरण हो जाए उसको ढूंढ कर निकाले, जो अपहरण करता को दंड करे दंड दे, तो इसलिए आदर्श पति और आदर्श राजा के नाते में युद्ध करके ये सब किया, ऐसे में मेरा काम मैंने मर्यादा पूरा किया। अब जहां तक सवाल आता है आपको ग्रहण करने का, ये तो क्योंकि आप रावण ने आपको दे गया था, इतने दिन उनका यहां रहा, मैं कैसे ग्रहण कर सकता, ये तो मर्यादा से बाहर की बात है। जब भगवान ने ये बात कहे, उपस्थित जितने मंडली थे सबका चमका छू गया, बोली ये क्या बात है भाई, इन्हीं के लिए थे सब किया, अभी उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लोग क्या कहेंगे, मैं एक केवल एक पति नहीं हूं, मैं एक राजा भी हूं, लोग क्या कहेंगे, यही उनका घर में इतनी दहाई से ले ली उनको। सीता जी इस बात को सुन करके संभल नहीं, तुरंत रो पड़ी। देवता लोग आए थे, वो आकर के बोले हम सब प्रमाण देते हैं, ऐसा कोई शंका की बात नहीं, कुछ नहीं, ये जगत जननी है, ऐसे ऐसे है। भगवान ने बोले आप कहते हैं लेकिन लोग क्या कहेंगे, मेरा मर्यादा कैसे रख। तब सीता जी भगवान कुछ कहने से पहले समझ गई सभी लक्ष्मण आदि सभी आकर भगवान को प्रार्थना करते थे। सीता बोले नहीं, प्रार्थना करना जरूरत नहीं, प्रभु की जो इच्छा मुझे वही करना है। लक्ष्मण लाओ सुखे ईंधन लेकर आओ, अग्नि संयोग करो, मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। अगर जिस दिन से रावण मुझे लाया उसी दिन से इसी क्षण पर्यंत अगर एक क्षण भी मन में वचन में काय में अगर भगवान श्री रामचरण के अलावा और किसी पुरुष का चिंतन किया हो, स्मरण किया हो, दर्शन किया हो, तब मुझे अग्निदेव मुझे भस्म कर दे। ये वचन कह कर के जब अग्नि संयोग हुआ सभी के सामने, सभी निर्वाक बैठे, किसी के वचन नहीं निकल रहा था क्या हो रहा है। भगवान राम भी गंभीर बैठे और उनके सामने अग्नि संयोग करके भगवान राम के चरण को स्मरण करके प्रणाम करके परिक्रमा करके सबके देखते देखते अग्नि प्रवेश कर गए। अग्नि में प्रवेश कर गए। अभी तक हिस्ट्री में एक ही ऐसी घटना है कि सभी के सामने अग्नि में प्रवेश कर गए, अग्नि भी शांत हो गया, उनका कुछ नहीं हुआ, कपड़ा भी जला नहीं, न कुछ भी हुआ, न आहा ओहो कोई चित्कार भी की, कुछ नहीं की। अग्नि में प्रवेश करके उतासन अग्नि जल रहा था उनके रह करके फिर बाहर आ गई। अब देवताओं ने पुष्प वृष्टि किए, घोर जय नाद भा जय घोष हुआ सीता माता की। सतमुत पति प्रता के शिरोमणि है, जगत जननी है, सबसे साध्वी तो प्रमाणित हो गया सबके सामने, अग्नि परीक्षा दे करके आए। तब भगवान ने फिर स्वीकार किए, राम के गृहिणी मतलब राम के गृहिणी, इस प्रकार के, इस प्रकार गृहिणी। इस प्रकार के होते हुए भी इतने बड़ी परीक्षा सब देख भी भगवान राम को साथ में लेकर के आए, अयोध्या में राजरानी होकर के रहे। लेकिन कुछ ही दिन के बाद अभी तो मां ने गर्भवती थी भी, उस अवस्था में कोई थर्ड क्लास लोग धोबी वगैरह कुछ हो, वो भी किससे कोई बता दिए, भगवान के सिक्योरिटी को सुने उनको बता दिए भगवान, जैसे भगवान के मन में कान में बात आया कि लोग ऐसे बात करते हैं, बोले हम राम जैसे थोड़ी है, इतना दिन रह गया उनके घर में ले लिया हमने, वो अपने पत्नी और हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो रहे थे, बातचीत कर रहे थे, पति पत्नी के घर में झगड़ा होता ना, वो एक नाइट कहीं चला गया था करके उनको घर में नहीं रख रहा, कैसे चला गया। आजकल तो पता नहीं कहाँ कहाँ अकेले घूमते रहते हैं। तभी का ये था, एक साधारण वासरम्यान एक धोबी भी ये नियम था, अगर पत्नी परमिशन लेकर तो परमिशन मिलेगा नहीं, कैसे जा सकते अकेला। अब एक दिन के लिए कहीं बाहर चला गया था करके उनके पति उनको स्वीकार करने के लिए नहीं। महाभारत में वर्णन आता है कि भीष्म पितामह के साथ अम्बा ने आ गया, वो तो स्वयंवर के समय में, और ये उस समय उनके पति वो भी स्वीकार निकला था, उनके गाड़ी में बैठा था, हमने जा, इतने कठोर नियम था पतिव्रता सतियों का, जो नियम बड़े कट्टर हुआ करता था। आजकल तो खुलेआम बिंदास, तो उनको भगवान राम सीरियस हो गए सुन करके, अब तो क्या बताएं। उत्तर रामायण में वर्णन है कि उनको सीता जी को बुला कर, लक्ष्मण को बुला करके उनको भेज दिया अभी इसी वर्ष में, फिर भी जंगल में भेज दिया। अपने मर्यादा का रक्षण करने के लिए ये भी किया उन्होंने, और वहां पे आश्रम में उनके पुत्र संतान उत्पन्न हुआ, जो भी हुआ बाद में और उसे जानते हैं, जो अंतिम समय में भगवान अकेले थे, दुखी तो थे ही, लेकिन फिर भी सारे देशवासी जो दोष दे रहे थे उनको भी पता चला। अब जब जो घोड़ा को रोके लव कुश ने, और उनते तो रामायण ही पढ़े थे, अब रामायण अगर पाठ हुआ, एक बार रामायण पाठ करते करते जब राजभवन में आए तो उनको बुलाया गया, भगवान राम भी सुने बड़े प्रसन्न होकर के, रामचरित भगवान राम सुने अपने पुत्रों की बुक से। अब धीरे धीरे तो लगे सबको पता चल रहा खुल, तो फिर आप बुला गया रचयिता कौन, वाल्मीकि माँ कौन है, आईडी प्रूफ पूछा गया भाई इतनी बढ़िया कौन है। अब पापा का नाम उसे लिखा नहीं था, जो उनका आईडी था उसमें फादर्स नेम नहीं था, मदर्स नेम था। अब उसको देखे बुलाया गया माता जी को, अब तो सामना सामनी है भरी सभा में, भाई माँ तो पहचानती है पति को, पति तो पहचानते है पत्नी को, भरी सभा में वहां भी। अब पूरे अयोध्या वासी अपनी गलती महसूस करके बोले, प्रभु हम कान नाक पकड़ने, गलती हमारा भाव था, वो तो जगत जननी सती शिरोमणि है, उनको स्वीकार कीजिए। भगवान राम फिर भी निरपेक्ष है, बोले नहीं लोगों का अपवाद है और एक बार टेस्ट होना चाहिए। इसी अवस्था में भगवान राम फिर टेस्ट लेना चाहते थे। अगर आजकल कोई ऐसे लड़कियों कोई बोल दे कि मैं इसे सुनना करके तो तुरंत मुंह में खरी खुटी आवाज दे देगी, तुम कौन सा दूध में धुले हुए हो, हाँ मुझे भी पता है, हाँ सब सर्च करके व्हाट्सएप से मैसेज सब निकाल देगी। लेकिन वहां पे पतिव्रता के शिरोमणि जगत जननी राम की गृहिणी मां सीता ने एक वाक्य भी नहीं कही, उच्चारण नहीं की, अपने फेवर में कुछ की करके नहीं, सभी के सामने ऋषि मुनियों के सामने वो जो खड़ी हुई, तो वाल्मीकि महर्षि वशिष्ठादि महर्षि खड़े होकर के बोले, हम आजीवन व्रत धारण किए हैं, इतने इतने कठोर नियम पालन किए हैं, शास्त्र अध्ययन किए हैं, सारे नियम जम सबको करके हम प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि अगर सीताजी के चरित्र में कोई कलंक होगा तो हमारे आजीवन तपस्या ध्वंस हो जाए, प्रतिज्ञा घोषणा करके किए देवताओं ने आकर। लेकिन फिर भी राम निरप थे, मां सीता ने बोले नहीं सब कुछ है मुझे, अगर प्रभु फिर भी मुझे चाहते हैं तो ठीक है, हे मां धरती अब तक जितने हुआ अब तो मुझे स्थान दे दो, अगर मैं सचमुच सती हूं, मैं पतिव्रता हूं, मैं भगवान राम की गृहिणी हूं, तू मेरे मां है, अभी मुझे स्वीकार करो। भरी सभा में सबके सामने भगवान राम के सामने देखते देखते धरती फट जाती है, मां सीता धरती को चल जाती है। ऐसे भगवान राम की गृहिणी है, ऐसे जगत जननी है, ऐसे सती शिरोमणि, ये उनके आदर्श है, ये सब हमारे हिंदू शास्त्र के आदर्श शिक्षा हैं, जिनको पढ़ करके आप बालिकाओं स्त्रियों अपने अपने चरित्र को सुधारते थे। लेकिन आजकल तो स्वप्न को पढ़ते नहीं सुनते नहीं, नवेल पढ़ेंगे, जर्मनी लैंग्वेज पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे, हमारे दुर्भाग्य है सब। हरे कृष्ण। Any question?
धन्यवाद महाराज। महाराज एक जिज्ञासा थी, ये प्रश्न ये था कि महाराज जैसे आप बता भी रहे थे कि जब कौशल्या माता से श्री राम जी मिलने के लिए गए, उन्होंने बैठने को कहा, लेकिन क्योंकि अब तो वनवास स्वीकार कर चुके थे तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। ऐसी
क्या क्या
तो स्वीकार नहीं किया। दूसरी तरीके से महाराज जब युद्ध हो रहा होता है और लड़ाई हो रही होती है, जब रावण से भगवान श्री राम की लड़ाई होती है तो रावण तो रथ में बैठ के आता है, तो राम जी जमीन में खड़े होते हैं, रथ नहीं होता उनका, तो इंद्र रथ भेजता है और लेकिन वो भगवान स्वीकार करते हैं और रथ पे बैठ के लड़ते हैं, तो ये कैसे समझे महाराज कि हालांकि उनका वनवास शायद उस टाइम भी चल रहा था लेकिन उन्होंने फिर भी रथ को स्वीकार किया, तो सब कोई कारण था महाराज या कैसे समझ सकते हैं?
तभी वनवास पूरा हो चुका था, है ना, ये अब लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन में। वनवास पूरा हो चुका था, अभी रावण को मारना था, सीता को लेकर के उनको लंका वापस आना था, ड्यू डेट ओवर हो चुका था, है ना। तभी वनवास नहीं पूरा था तो लंका नहीं आते ना, अयोध्या वापस भी नहीं आते, युद्ध सेतु बंद होने से पहले ड्यू डेट ओवर हो चुका था। ओके जी, तो भरत जी को मैसेज भेजे, मैं आ रहा हूं, डिले नहीं, मैं आ जाऊंगा, ठीक है, प्रिपरेशन करो, इसलिए पहले एडवांस मैसेज भेजे थे उनके पास। वो थे नहीं ना, वो ऑप्शन थे, बाद में साथ में तो गए तो थे, आपको पता नहीं क्या, यही तो है, आप लोग रामायण पढ़ते ही नहीं, अब ऐसे ऐसे कुछ नहीं पूछ रहे थे, मैं दोबारा रामायण क्लास करूंगा इधर, वो तो गए तो थे चित्रकूट में जाकर, कितने रोध हो करके के भगवान राम वापस भेजे,
भगवान को लेने के लिए
और किस लिए गए थे, तो घर में थे नहीं ना, तभी साथ में जाने के लिए, ये बात पता नहीं क्या, जब भगवान को वनवास हुआ वो दोनों लड़के अपने मामा के घर थे, वो अयोध्या में थे नहीं, होते तो अभी चले जाते, होते तो एक बात ही नहीं बन पाता, पता नहीं क्या आपको, तब कैसे जाते
नहीं, मैं पूछ रहा
जब आए तो तुरंत गए, क्या बात कर रहे
महाराज। जब दूसरी बार भगवान राम ने परीक्षा ली, जब सीता माता उसमें प्रवेश कर गई, तो ये दिखने में एक्सटर्नली तो बहुत ही ज़्यादा कठोर परीक्षा लगती है, तो ऐसा लगता है कि इतने एक्सट्रीम पे भगवान राम ने क्यों टेस्ट किया, या इतना ऐसा लगता है बिल्कुल फैनेटिक सा स्टेप था, या इतना अंडरस्टैंड, जबकि वो सब जानते थे, सारे देवता और सब प्रमाणित कर रहे थे, और सीता माता भी प्रूव कर चुकी थी, इसको कैसे समझे कि इतना, इसके पीछे क्या मूलभूत कारण था?
उसके पीछे यही शिक्षा है भगवान देते हैं कि स्त्रियों को कितने कठोरता को सामना करके अपने चैस्टिटी को प्रूव करना होता
है। तो इसका अगर ये देखें, ये
समाज में अगर कोई एक भी बात उठे तो उसको प्रूव करने के लिए यू हैव टू गिव अग्नि परीक्षा, यू हैव टू कितने भी सामना करके दिखाना पड़ेगा।
शायद वो ये परीक्षा इसलिए ले सके क्योंकि उनका खुद का चरित्र स्पॉटलेस था भगवान राम का, परंतु आज के समय में अगर पुरुष का खुद का चरित्र भी इतना स्पॉटलेस नहीं है,
तो इसलिए वो भी स्पॉटलेस नहीं होते,
तो उनको ये अधिकार है कि इस प्रकार का एक्सपेक्ट करना चेस्टिटी या इस प्रकार का परीक्षा देना।
एक्सपेक्ट तो वही करेगा जो खुद एक्सपेक्ट करने के योग्य हो, है ना, इसलिए इसमें केवल सीताजी के चरित्र के साथ साथ राम के चरित्र के बात आता है, वो भी तो ऐसे थे, क्योंकि जब सीताजी के लिए भगवान ने रो रो करके इतने साल पेड़ पौधे पागल की तरह रो रहे थे, लोग सोचे होंगे इतने क्या ओम स्त्री स्त्रैणा है, इसे मन में आया होगा ना सुन करके, लेकिन ये जो घटना हुआ इससे पता चल जाएगा बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नो कैसे इस चीज को इस भावना को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इस लीला, है ना।
अरे हम दूसरी बार ये परीक्षा शायद इसलिए भी ली थी कि फिर से वो घर के बाहर ही थे वाल्मीकि आश्रम, इसलिए परीक्षा ली थी।
वाल्मीकि आश्रम में थे इसलिए परीक्षा, ये कारण था, दूसरा कारण था कि धोबी ने पॉइंट आउट किया था ना,
तो पहले तो अग्नि से परीक्षा ले ही चुके हैं अग्निदेव ने,
वो तो ले चुके थे, उसके बाद में फिर कंप्लेन आया ना, कंप्लेन जो धोबी ने बोला तो बाद में किया ना,
तो वो तो रावण के काल का बोला उसने कि रावण में लंका में रही थी इसलिए परीक्षा, भगवान उसकी परीक्षा ले चुके, अब उन्होंने को बाहर निकाला दोबारा, फिर दोबारा से परीक्षा का ये कारण था कि वो अकेले से वाल्मीकि आश्रम
तो एक वाल्मीकि आश्रम में थी ये भी और प्ले ये भी दोनों नहीं वो लक्ष्मण भेजे थे वो वाल्मीकि आश्रम नहीं छोड़े थे तो जंगल में छोड़कर आ गए थे वो तो मिल गए उनको वो जाकर पहुंचे भगवान उनको आश्रम के लिए जाकर छोड़ने के लिए नहीं बोले थे जंगल में छोड़कर आ गए
दो छोटे क्वेश्चन है एक तो कि अग्निदेव के साथ ही मतलब परीक्षा क्यों बोला गया और दूसरा ये कि जब सारे देवता बोल रहे थे तो उसमें अग्निदेव भी वहीं पर होंगे वो भी कंफर्म कर रहे होंगे तो उसके बावजूद उनकी बात को बिलीव नहीं करके फिर भी वो परीक्षा के लिए बोल रहे हैं भगवान तो क्यों हो रहा
है वही तो परीक्षा देवता लोग तो समझे थे लेकिन मूढ़ लोग नहीं समझते हैं हम लोग है ना हम ग्रस मेटेरियलिस्ट है हमको ग्रस उदाहरण चाहिए सटल से नहीं है ना इसे तो प्रैक्टिकल बोलने से थियोरी से काम थोड़ी होता है ना
महाराज मैं मतलब से बोल रहा हूँ कि अग्निदेव की जो पावर है हीट और लाइट तो उससे वो कंफर्म करना चाह रहे थे कि वो पूरी चेस्टिटी है बट वो कुछ भी तो कंफर्म कर रहे हैं बोल कर भी तो क्यों नहीं बिलीव कर रहे हैं
हाँ बोल करके करने से तो कर सकते थे लेकिन वो पूरा अग्नि देखा कर दिखा दिए उसमें और ये जो प्रूफ ये प्रूफ से बेटर है ना आप क्या चाहते हैं भगवान बेटर करना चाहेंगे ना उससे नीचे करना चाहेंगे जब अग्नि के प्रवेश करके आ जाए इसमें जो उनका जो उज्ज्वल होगा चरित्र का वैसे के बोल दे मान ली उसको होगा क्या तो भगवान किम कसर छोड़ेंगे अपने मर्यादा है ना
एक और पूछा था कि जैसे मतलब अग्निदेव को ही मतलब बोला गया कि उन्हीं के साथ
लक्ष्मण ने उनको ड्यूटी देकर गए थे भाई हाँ पहले बता था कि अग्निदेव को वहां रखकर गए थे उनके जिम्मा में लखन के जो बुलाए वो जब लखन छोड़ के चले गए सीता जी अकेले तो लखन ने अग्नि को ड्यूटी देकर गए बोले आप देखभाल करते ना मैं जा रहा हूँ तो अग्निदेव ने ली यस
थैंक यू महाराज जी फॉर योर क्लास क्लास हमेशा अच्छा होता है एक प्रश्न महाराज जी की ये जो रामचरित मानस है तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रमाणिक ग्रंथ है या नहीं मतलब मैं यहाँ आकर के जैसे मैं बिल्कुल प्रमाणिक मानता था महाराज जी बट यहाँ सुना कि प्रमाणिक नहीं है जो वाल्मीकि
नहीं नहीं मानता था अभी भी मानते रहो
जी
है ना कोई दिक्कत नहीं ये जरूर है हमारा वैष्णव संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय में गोड़ियों के प्राधान्य है हम लोग हिंदी कवि साहित्य इसमें नहीं है इसका मतलब नहीं कि वो कुछ नहीं है करके है ना वो हैं अभी चार संप्रदाय के भी अंदर हैं और भगवान राम के भक्त हैं लेकिन उसमें रामायण मानस में और वाल्मीकि रामायण तो ही प्रामाणिक से मानते हैं संस्कृत में लिखा है वाल्मीकि जी लिखे हैं उसके बाद में लोक भाषा में लिखे उन्होंने उनका तुलसीदास जी ने तो उसको हम तो पूरे मानस से पढ़े नहीं लेकिन प्रभुपाद जी के कई जगह में कमेंट है कि इसमें कभी कभी निर्विशेषवाद आदि का थोड़ा सा मिक्स है वर्णन हम नहीं जानते हैं लेकिन प्रभुपाद जी ने कहते हैं तो हम उसको मानते भी हैं लेकिन प्रभुपाद जी ने कई जगह में उदाहरण दिए हैं भी मानस का ऐसा बात नहीं है तो प्रभुपाद जी जरूर पढ़ेंगे कई जगह से उसके चौपाई कोट किए हैं और मैंने एक वरिष्ठ भक्त से सुना हूँ उन्होंने बोल रहे थे कि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के प्रश्न पूछा गया था क्योंकि मानस तो भारतवर्ष का 50% का 60% एरिया में छाया हुआ है लोगों के मन में छाया हुआ उसको इसे कह देना वो कोई स्वीकार नहीं करेंगे तो उनको पूछे सिद्धांत शब्द बोले देखो वो प्रामाणिक है लेकिन हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो भार्गव थे तुलसीदास जी भार्गव समझते ना भृगुवंशी थे ब्राह्मण भृगु ने भगवान के छाती में लात मारा था तो इसीलिए हम बोलते तू भगवान को लात मारा था हम आपने नहीं पढ़े इसलिए नहीं बोले ऐसा बात नहीं था ये बात भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी की बात था और मेरा एक पर्सनल बात मैं कहता हूँ 1991 या 1992 में जब गौरगिंद महाराज भुवनेश्वर मंदिर का प्रतिष्ठा कर रहे थे तब मेरे साथ भी दो तीन प्रभुपाद डिसिपल थे मैं भी नाम में गया था मेरे साथ भी वो लोग गए थे विदेशी थे वो लोग भी तो गौरगिंद महाराज तो भी थे ये थे तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के एक बाबाजी शिष्य हैं भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद साहब दो या तीन लोगों को परम हमसे दिखा दिए थे बाबाजी दिखा देते उनका नाम था निकेतन दास जी बाबाजी महाराज बड़ी लंबी चौड़ी 7 फुट हाइट बड़े फिगर थे, उड़ीसा के थे वो, तो उनको उन्होंने मुख्य अतिथि करके बुलाए थे गोविंद महाराज ने। और तभी इसे कोई व्यवस्था नहीं था, लेकिन फिर भी उनके सिंगल रूम अलग से देख करके उनको गोविंद महाराज स्वयं जाते थे, सुबह शाम प्रणाम करते थे, उनको सेवा करते थे, बड़े उनको ध्यान देते गोविंद स्वामी। तो इसलिए उड़ीसा के कई लोग जाते थे महाराज से मिलकर, तो उनके जाते थे नित्यानंद शिवाज महाराज है, यही अभी एक ही मात्र बाबा जी ऋषा कुल बचे हैं धरती में। तो मैं भी गया मिलने के लिए, मेरे साथ भी जो प्रभुपाद ऋषा बोलते वो भी गए। तो वो उड़ीसा के थे वो बाबा जी महाराज, तो बहुत वृद्ध हो चुके थे, स्वागत रूप से मुख्य अतिथि उनको बुलाया गया था। तो मुझे एक मेरे से बात किए, बात करते करते तो पता चला कि मैं वृंदावन रहता हूँ। बोले बेटा तू वृंदावन रहता है, मानस पढ़ा है? बोला नहीं, तू मानस नहीं पढ़ा। बोले भक्ति रसामृत सिंधु और मानस में क्या अंतर है? ये स्पष्ट है उनका बात है, और दोनों प्रॉपर डिसाइपल रिकॉर्ड करते हैं। बाद मुझे बोल रहे थे ट्रांसलेशन करने के लिए इंग्लिश में, मैं उनको बता रहा था, वो इसी बता रहे। बोले बेटा कोई अंतर नहीं, भक्ति के रस तो हुई है, ये उनका कहना था। अब मैं तो उनको पहली बार मिला, वही देखा कि 3 दिन का फेस्टिवल था, गोविंद महाराज अपने प्रभुपाद जी के समान सम्मान देकर उनकी सेवा करते थे, और उनका स्टेटमेंट ऐसा था। तो इसलिए ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, तो हमारा सांप्रदायिक निष्ठा को हम मेंटेन भी करना होगा। वाल्मीकि रामायण प्रमाण प्रामाणिक है, था और रहेगा, और उसके प्रति भी असम्मान भाव नहीं रखना चाहिए। भले उसको ना पढ़ो, कभी जरूरत पड़ के कोट करो, जैसे प्रभुपाद जी ने की। किसको? हाँ, ये भगवान राम की इच्छा था, सीता माता की इच्छा नहीं था, ये समझना होगा, है ना। सीता माता की इच्छा मतलब ये राम की ही इच्छा, रेगुलेटर तो वही उनके पास है ना, नहीं तो सीता माता कैसे चिंता कर सकती है, है ना। मत्त बुद्धि ज्ञान अपोहनम च, भगवान कहते मैं ही तो देता हूं, नहीं तो करंट नहीं होगा तो उनका घूमेगा कैसे, चिंता आ गया कैसे, हृदय में बैठ कर बोलते करो, बाहर से इसे लीला करते हैं, तो लीला तो भगवान राम की इच्छा था, नहीं तो उनके मन में अपना इच्छा कैसे हो सकती।
थैंक यू महाराज, बहुत ही अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया। मैं वही जा रहा था महाराज, भगवान भक्त वत्सल है, मतलब उनकी बहुत ही प्रमुख क्वालिटी है, तो थोड़ा सा ऐसे देखने में एक्सटर्नली लगता है कि सीधा
ये निष्ठुर है। भले देखने में निष्ठुरता लगता है, लेकिन यही है भक्त वत्सलता। उसमें सीता जी के जो गरिमा है, अगर नहीं करते इसे प्रमाण कर पाते, सीता जी के महिमा जितने बिखरा जितने बढ़ा, अगर भगवान राम ने ऐसा ना करते इसे बढ़ता, तो भगवान राम ऐसे किए क्योंकि उनके महिमा को बढ़ाने के लिए, यही तो भक्त वत्सलता है। इसीलिए भगवान भक्तों को कष्ट में डालते हैं, भक्ति और भक्त का महिमा बढ़ाने के लिए, ये उनकी वत्सलता है। दे वांट मोर देन हिम ग्लोरीफाइड, इसलिए करना चाहते हैं।
थैंक यू महाराज। वो जो 9th कैंटो परशुराम जी का जो कॉन्टेक्स्ट आता है, तो उसमें जो उनके पिताजी है,
क्या क्या क्या
जमदग्नि, परशुराम जी का जो कॉन्टेक्स्ट आता है,
हाँ,
तो उसमें जो उनके पिताजी है जमदग्नि, तो वो यज्ञ कर रहे होते हैं, तो अपनी वाइफ को भेजते हैं वो पानी लाने के लिए, तो वहाँ पे नदी में कुछ गंधर्व नहा रहे होते हैं, तो उनकी वाइफ देखती है, तो मन में कुछ कंटेमिनेशन आ जाता है, तो वापस जाती है वो, तो वो समझ जाते हैं उनके पति अपने पावर से जो भी है, तो वो बोलते हैं अपने बेटे से किसी ने मार देने के लिए, जस्ट मतलब सोचा ही था कुछ कंटेमिनेशन, तो चेस्टिटी लूज का क्या मतलब पनिशमेंट है, ऐसे मतलब अपने बेटे से ही मरवा।
देखिए पहले युग में ये नियम था कि मन में भी कई बुरा काम करो, अन्य पाप करो कर्म करो, तो उसका परिणाम भोगना पड़ता था। कली युग में माफ है, मन में करो तो बुरा काम करो तो फल नहीं होगा, अच्छा काम करो तो फल मिलेगा, है ना। नहीं ये था क्योंकि तभी तो कलयुग था नहीं ना, तब मन में करने तो पकड़ा जाता था, तो उसका पनिशमेंट
बेटे से ही मरवा दिया।
हाँ
बेटे से ही मरवा दिया,
क्या
अपने बेटे से ही?
हाँ हाँ, तो दिक्कत क्या है उसमें? आप कंप्लेन करना चाहते हो ना, जो बेटे से मरवा सकते थे वो बेटे से जिलवा भी सकते, ये शक्ति था उनका, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं, है ना।
कोर्ट किया कि भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने बोला कि भृगु मुनि ने लात मारी इसलिए प्रसन्न निकट है। तो युद्ध के दौरान अर्जुन तो रोज ही भगवान के चरण लगाते थे, तो उसका बुरा क्यों नहीं मान रहे?
अर्जुन का लात मारने का भाव और भृगु मुनि का लात मारने का भाव अलग था,
दोनों भगवान की इच्छा से ही हो रहा है।
हाँ, दोनों भगवान की इच्छा से था, लेकिन दोनों शिक्षा अलग अलग प्राप्त होता है ना। नहीं, एक माँ के बेटा वो दूध पीते समय गोद में रहते समय कई बार लात मारती है माँ को, लेकिन ये दूसरा कोई आकर मार दे, इसमें अंतर है ना। नहीं, दोनों ही काम एक ही है लेकिन बहुत भारी अंतर है ना।
बैकुंठ में जाके लात मार रहे हैं,
हाँ,
तो निश्चित रूप
किसका घर में बेडरूम में घुसकर लात मारना है ना। नहीं,
निश्चित रूप से भगवान विष्णु, नहीं निश्चित रूप से भगवान विष्णु की इच्छा नहीं होगी वो। भगवान विष्णु की इच्छा नहीं है वो,
भगवान विष्णु की इच्छा था, लेकिन फिर भी जो भक्त है,
जब गोपियां भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने चरण रज देने को तैयार है, तो वहां पे भृगु मुनि अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो अपराध कैसे?
तो आप क्या लक्ष्मीनारायण सिंह, आप जानते हैं ना, इसी केस के कारण लक्ष्मी जी भी भगवान को छोड़कर चली गई, पता है ना। नहीं तो आप अपने आप से ज्यादा समझदार समझते क्या उनसे?
नहीं महाराज,
तो फिर
कह रही थी
ये तो भाव क्लियर दिखाया जाता है, परीक्षा करने के लिए गए थे और उन गुस्सा दिलन के करने थे, भगवान जानते थे परीक्षा करते थे, देव परीक्षा करने के लिए निकले थे। लेकिन जो भक्ति का नियम कहता है, जो फॉर्मूला कहता है कि भक्ति हमेशा अनुकूल में होना चाहिए, प्रतिकूल में नहीं। जो रावण आदि हिरणाक्ष आदि भगवान से लड़ाई के, भगवान को प्रसन्नता प्रसन्न करते थे, भगवान को खुश करने के लिए लड़े थे, ये बात बताना नहीं, लेकिन फिर भी भक्ति नहीं माना जाएगा। भगवान को प्रसन्न किए अपने कार्य से, लेकिन भक्ति नहीं है। लेकिन यशोदा माँ भगवान को गोद से उठाकर दूध पी रही थी, रख दी उनको, तंग की उनको, दुख दिया, कष्ट दिया, उनका मन में उनको अपमानित किया, लेकिन फिर भी भक्ति है, क्योंकि अनुकूल था ये प्रतिकूल था। इसलिए भाव के अंदर है, प्रतिकूल भाव अनुकूल भाव है ना।